धौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। अवगय शुद्ध भावे, उवगय कम्मख उच्च उभावे, पणमीय सौवरहंते भावनियोगं परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें प्रथम खंड है जीवस्थान नामक और अपना विषय है भावानुगम। पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 206 पर हम आ गए, 206। हाँ, आपका प्रश्न है उसमें पूछना।
तो विशिष्ट पांचवें स्थान में
वो देशघातीकरण होता है ऐसा कहा है, परंतु अभी पूरे तो देशघाती नहीं हो गए ना, चालू सत्ता में चालू हो गया है। मुझे पता नहीं उसके बारे में, फिर निकाल के आप देख लो लब्धिसार में कहीं आता है क्या। लब्धिसार में देखना आप। हाँ बोलो। हाँ देखो, वैसे हमारा ओघ में भावानुगम समाप्त हुआ है। भावानुगम इसमें जीव के पांच भावों की बात है। कौन से पांच भाव है? तो औदयिक है, औपशमिक है, क्षौपशमिक है, क्षायिक है, पारिणामिक है। पारिणामिक तो स्वभाव भाव है, परंतु यहाँ सब परिणति की ही बात है। भले पारिणामिक भी क्यों ना है, उसको भी परिणति के रूप में ही लिया है। यहाँ पर जो कर्मों के निमित्त से जो होते हैं, कर्म का उदय है, उपशम है या शोपशम है या क्षय है, उसके निमित्त से जीव के परिणामों को जो यहाँ नाम बताए गए हैं, उसको कहेंगे वो औदयिक आदि भाव, जिसको हम नैमित्तिक भाव भी कहते हैं और उपाधिक भाव भी कहते हैं। कर्म की उपाधि यानी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले यहाँ जीव के भाव, ये उनका नाम है। तो ये जो अलग अलग नाम कितने हैं उसकी हमने चर्चा की थी। तो वैसे पांच भावों का आपने प्रकरण पहले भी सुना होगा बहुत बार, तो यहाँ तो ये पांच भावों के संबंध में ये चर्चा की है कि ये उसके अलग अलग के स्थान और विकल्प कितने होते, ये चर्चा आई थी। जैसे औदयिक भाव में स्थान 8 है और उसके विकल्प यानी उसके एक एक जो स्थान है उसमें अनेक पॉसिबिलिटी संभवते हैं। जैसे गति औदयिक भाव है, गति, कषाय, लिंग और लेशा, ये चार ग्रुप वाले तो है ना, और बाकी एक एक सिंगल सिंगल है। मिथ्यात्व, असंयत, अज्ञान और असिद्धत्व, यानी ये 8 स्थान कहलाते हैं। विकल्प जैसे गति औदयिक भाव, इसमें 4 विकल्प है, 4 कोई भी हो सकते हैं, 4 गतियों के नाम। कषाय हमने एक स्थान कहा, उसमें 4 विकल्प है। लिंग उसमें 3 विकल्प है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। लेशा में 6 विकल्प है। इसलिए हर एक भाव में स्थान कितने हैं और विकल्प कितने, इसकी चर्चा की। ये हो गई औदयिक की बात। औदयिक के बाद हमने औपशमिक की बात देखी थी। औपशमिक में 2 ही स्थान है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, परंतु विकल्प उसमें सम्यक्त्व तो एक ही प्रकार का बताया, परंतु चारित्र 7 प्रकार का बताया। क्यों ऐसा? क्योंकि जो उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र कहाँ होते, तो उपशम श्रेणी में। तो नपुसक वेद का उपशम करने वाले का, फिर उसके बाद स्त्री वेद का उपशम होता है, तो वो अलग परिणाम बताए उसका। पुरुष वेद और छह नौकशा एक साथ उपशमित होते हैं तो वो करने वाला जीव, ये तीसरा भेद हुआ। चौथा है क्रोध का उपशम, मान का उपशम, माया का उपशम और लोभ का उपशम। इस तरह से सात विकल्प होते हैं और सबको मिलकर औपशमिक चारित्र एक ही नाम दिया जाता है। तो ये औपशमिक भाव के हो गए। शायिक भाव में कितने देखे थे हमने, स्थान कितने देखे थे याद है? स्थान पांच थे और विकल्प नौ थे। पांच कौन से स्थान? शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र और दानादि मिलकर शायिक लब्धि कह के एक सबको मिलकर एक नाम दिया था, शायिक लब्धि। अब बाकी तो सिंगल सिंगल है। शायिक लब्धि के पांच भेद हो जाते हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। तो वो एक के बदले पांच लिए, यानी चार बढ़ गए तो नौ हो जाते, तो ये नौ शायिक भाव हो जाते, यानी उसके विकल्प की अपेक्षा नौ हो जाते हैं और स्थान के पांच होते हैं। अब शायुपमिक भाव में देखते हैं, शायुपमिक भाव में स्थान कितने देखे थे? एक ज्ञान का एक स्थान, अज्ञान का एक स्थान, ज्ञान है अज्ञान है, फिर दर्शन है। एक एक कर्म की अपेक्षा बात करो ना, ज्ञानावरण की अपेक्षा, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान चार प्रकार के और तीन को ज्ञान, ये ज्ञान अज्ञान दो अलग भेद किए। दर्शन जो तीन है वो शायुपमिक भाव है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो ये तीसरा स्थान हुआ। अभी मोहनीय में लगाना, शौक्षमिक सम्यक्त्व, सीमा संयम और शौक्षमिक चारित्र, ये छह हो गए। और ये लब्धि, जो शौक्षमिक लब्धि, पांचों एक साथ, ये सात तो स्थान हुए। कौन से? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, शौक्षमिक सम्यक्त्व, संयमा संयम, फिर चारित्र और ये लब्धि। ये सात स्थान हुए, उसमें 18 विकल्प, जिसे ज्ञान के चार भेद है, अज्ञान के तीन भेद है, दर्शन के भी तीन है, उसके बाद वो सम्यक्त्व, संयमा संयम, चारित्र एक एक लिया यहाँ पर, और ये पांच लिए लब्धि के पांच भेद किए। इस तरह 18 भेद हुए, विकल्प 18 हुए। तो हमने औदयिक देखे, औपशमिक देखे, क्षायिक देखे, क्षौपशमिक देखे, पारिणामिक का तीन बताए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन उसके बताए अलग अलग। तो ये बातें हमने ये पढ़ी थी सारी, सबके स्थान कितने और क्या है। अभी आदेश की बात चलेगी। पेज नंबर अपना है 206। अभी यही बात मार्गणाओं में लगाएंगे, यानी पहले गुणस्थानों में सभी भाव लगाए। पहला गुणस्थान कौन सा भाव है? तो पहले चार गुणस्थान तक दर्शन मुनि की अपेक्षा बात करते हैं, तो पहला गुणस्थान औदयिक भाव है। दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक बताया, क्योंकि दर्शन मुनि का वहाँ कर्मों की कोई वहाँ अवस्था निमित्त नहीं है, अनंत अनुबंधी का उदय है, कौन उसकी अपेक्षा यहाँ औदयिक, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ दर्शन मुनि की अपेक्षा लग रही है। तीसरे गुणस्थान में भी क्षौपमिक भाव है और चौथे गुणस्थान में तीन भाव है, क्षौपमिक भी है, कायिक भी है, औपशमिक भी है, तीन प्रकार के सम्यक होते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम है असंयत सम्यक दृष्टि, तो सम्यक वहाँ का सम्यक दृष्टिपना जो है उसमें तीन भाव लगते हैं और असंयत जो है वो औदयिक भाव है। संयमपना का वहाँ प्रकट नहीं है, संयम उसका घात हो रहा है, इसलिए उसको औदयिक का। पांचवें गुणस्थान का शौपशमिक, क्योंकि यह चारित्र मोहनी की बात है। छठे सातवें में शौपशमिक चारित्र, चारों उपशामकों में औपशमिक चारित्र बताया। प्रश्न ऐसा होता है कि उपशम तो पूरा उपशम तो ग्यारहवें में है, फिर भी उपशम का कार्य शुरू हुए इसलिए आठवें को भी औपशमिक चारित्र कहते हैं उपचार से। नौवें दसवें में भी एक प्रकार से कुछ प्रकृतियों का उपशम हुआ इसलिए वहां पर भी कह देते हैं। अपेक्षा कौन सी है उसकी बात यहाँ चल रही है, औपशमिक चारित्र की बात है। और वहाँ जो मैंने कल परसों बताया था ना, ये राग जो है, वहाँ क्रोध का उदय जो है वहाँ जो संज्वलन का वहाँ सौक्ष्मिक रूप से उसका भाव हम ले सकते हैं उसको क्षपक श्रेणी में। क्षपक श्रेणी में वो हाँ वो क्षयिक चारित्र है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पेज नंबर 206 पर नीचे 10 नंबर का जो सूत्र है, पहले ऊपर से पढ़कर फिर नीचे आते हैं। आदे सेन गई आणु आदेण निरग निरगये निरय गई चाहिए। पहले वाले ये निकालो जरा, अन्यत्र जहाँ आदेश से बात होती है ना, निरगई ये कोई ये नारकियों की जो यहाँ है देखो आदेश की अपेक्षा 22 नंबर देखो, 22 नंबर का पेज 21 नंबर का सूत्र देखो। आदेशेन गदी आणु आदेण, यहाँ गई आणु आदेण ठीक है चल जाता है उसमें भी। निरय गदीये यहाँ निरगये हुए ना, निरय गदीये यहाँ दी के बदले उन्होंने ई यूज किया है, दोनों ही आते हैं प्राकृत में, निरय चाहिए। नेरयेसु मिच्छा दिट्ठित्ति को भावो, अभी अपने पेज पर चल रहे 206 नंबर पर। जैसे हमने गुणस्थानों में मिच्छा दृष्टि कौन सा भाव है, यहाँ पर भी यही बात लगाना है, दर्शन मुनि की अपेक्षा लगाना है यहाँ पर कभी। तो आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद, सॉरी ऊपर क्या बताया हमने, मिच्छा दिट्ठित्ति को भावो ओदयो भावो हिंदी उसका। आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है, औदयिक भाव है। मैंने पहला गुणस्थान ये कौन सा भाव है, तो हमने देखा था चार गुणस्थानों में दर्शन मोहनी की अपेक्षा लगाना है, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न हुआ अश्रद्धानुरूप परिणाम पाया जाता है। कर्मों के उदय की अपेक्षा है ना, तो मिथ्यात्व का उदय लेना यहाँ दर्शन मोहनी में से। शंका, अब यहाँ मिथ्यात्व में आया है, सादी मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय का क्षय है, सम्यक प्रकृति का भी उदय का क्षय है, तो अभी शंकाकार उस अपेक्षा से पूछ रहा है प्रश्न। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती प्रकृतियों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, तथा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, अथवा अनुदयोपक्षम से, अनुदय वही उपशम, और मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धकों के उदय से सर्वघाती मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है। एक्चुअली सर्वघाती पहले चाहिए, ऊपर संस्कृत है, प्राकृत में देखो लास्ट लाइन अनुदव समेन वा मिच्छत्त सर्वघाती फद्दयाणम उदयन। मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से ऐसा चाहिए, सर्वघाती शब्द पहले चाहिए, नहीं तो यहाँ सर्वघाती मिथ्या दृष्टि भाव ऐसा होता है। वो सर्वघाती ये विशेषण स्पर्धकों का है, मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से, समझना ना कैसे पढ़ना। अभी आते हैं 207 पेज पर। मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है इसलिए उसे एक सौक्ष्मिक क्यों न माना जाए, ये इसकी पहले भी चर्चा हुई थी। समाधान न तो सम्यक्त्व के देशघाती और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय अथवा सदवस्था रूप उपशम अथवा अनुदय रूप उपशम मिथ्या दृष्टि भाव का कारण है, क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि उसका उदय नहीं है ये कुछ मिथ्यात्व का कारण है, मिथ्यात्व का उदय है ये कारण है। पहले भी तीसरे गुणस्थान वगैरह के संबंध में चक्षुक्षम सम्यक्त्व के संबंध में चर्चा हुई थी, वहाँ सम्यक प्रकृति के ही उस उदय को वहाँ कारण कहा था और वो उदय किस रूप से होता है उसकी बात की थी। जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है वो उसका कारण होता है। कारण कौन सा है? जो नियम से उत्पन्न हो। यदि ऐसा न माना जाए तो अनवस्था दोष का प्रसंग आता है, यानी अन्यत्र कुछ यही रूल सर्वत्र लगा लो तो अन्य भी दोष वहां उत्पन्न हो गए। यदि यह कहा जाए कि मिथ्यात्व के उत्पन्न होने के काल में जो भाव विद्यमान है वे उसके कारणपने को प्राप्त होते हैं, यानी जो मिथ्या दृष्टि के जो जो भाव विद्यमान है अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ज्ञान दर्शन असंयम आदि भी मिथ्यात्व के कारण हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वहां विद्यमान है। क्यों अंत ऐसा है नहीं? क्योंकि उस प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाता है, इसलिए यही सिद्ध होता है मिथ्या दृष्टि का कारण मिथ्यात्व का उदय ही है, क्योंकि उसके बिना मिथ्यात्व भाव की उत्पत्ति नहीं होती, यानी अन्य किसी कारण वो मिथ्या दृष्टिपना नहीं है, बस मिथ्यात्व के उदय से ही होता है। शासन संवादित इच्छित्ति को भावो पारिणामियो भावो नारकी सासादन सम्यक दृष्टि वो ध्रुव बराबर करना, यह कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। यही पहले चर्चा हुई थी, यहाँ पर भी दोबारा ले रहे हैं। शंका अनंतानुबंधी चारों कषायों के उदय से ही, चारों है नहीं, चारों में से किसी एक के, तो चारों को लिया। जीव सासाधन सम्य दृष्टि होता है इसलिए उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते हैं? तो उसका उदय कहना था, उदय के उदय से होता है, पर हमने पहले नक्की क्या किया था? दर्शन मोहनी की अपेक्षा लगाना। दर्शन मुनि का किसी तीन में से किसी का भी उदय नहीं है, नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनीय निबंधनक यानी उसके निमित्त से आदि के चारों ही गुणस्थानों में चारित्र को आवरण करने वाले मोह कर्म के तीव्र उदय से, चारित्र मोहनीय का तीव्र उदय असंयम भाव के प्राप्त होने पर भी चारित्र मोहनी की विवक्षा नहीं की गई है। अतएव विवक्षित दर्शन मोहनी कर्म के उदय से उपशम से क्षय से अथवा क्षयोपशम से सासादन सम्य दृष्टि नहीं होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव। आप कहेंगे वहां उपशम चल रहा है ना, तो उस उपशम के कारण सासादन हुआ है? उपशम के कारण सासादन में है तो औषमिक सम्यक तो क्यों हुआ? औषमिक सम्यक तो के लिए कहेंगे उपशम से हुआ है, परंतु उपशम के कारण क्या सासाधन हुआ है? तो उससे अनंतानुबंधी, पर अनंतानुबंधी की तो अपेक्षा नहीं है, तो क्या कहेंगे? पारिणामिक भाव कहेंगे। इसलिए वो पारिणामिक भाव है। अब आगे बढ़ते हैं। सम्मा मिच्छा दिठित्ति को भावो खवो व समीवो भावो नारकी सम्यक मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर भी सम्यक दर्शन का एक देश पाया जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने एक ही प्रकृति के उदय और वो उदय कैसा है तो सम्यक मिथ्यात्व ऐसा कर्म है उसका थोड़ा सा अंश पाया जाता है, इसलिए उसको क्षयोपशमिक भाव कहा। वो मिथ्यात्व का उदय नहीं है वगैरह वगैरह हम कहते हैं, नहीं पोजीशन क्या है हम ज्ञान कराने के लिए कहते हैं, अन्य दो प्रकृतियों का उदय नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, परंतु कारण उसके कारण उसको क्षवश्रमिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो दोष अभी मिथ्यात्व तो में बताया वैसा ही वहाँ दोष आएगा। इसलिए एक ही प्रकृतियों में वो सम्यक्त्व का थोड़ा अंश पूरा मिटाने की सामर्थ्य नहीं, थोड़ा अंश प्रकट है, इस अपेक्षा से अत्यंत यानी जात्यंतर कोई परिणाम हो जाता है, इसलिए उसको क्षवश्रमिक कहा था। इसकी चर्चा पहले गुणस्थान में आई थी। शंकाकार पूछते हैं जात्यंतरत्व, जात्यंतर समझते हैं जाति अंतर, जैसे देशांतर करते हैं यानी कि अन्य देश को जाते हैं, भाषांतर यानी अनुवाद करते हैं, जात्यंतर यानी अन्य जाति, जात्यंतरत्व को प्राप्त, भिन्न जातीयत्व को प्राप्त, सम्यक मिथ्यात्व भाव में अंश अंशी, अंशांशी यानी अंश अंशी यानी अवयव अवयवी भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यक दर्शन का एक देश नहीं है। पहले भी ये बात आई थी, अवयव यानी सम्यक्त्व, अवयवी यानी सम्यक्त्व और अवयव यानी उसका अंश है, तो कहते ऐसा तो वहां नहीं है। समाधान, अभेद की विवक्षा में सम्यक मिथ्यात्व के भिन्न जातीयता भले ही रही आवे, किंतु भेद की विवक्षा करने पर उसमें सम्यक दर्शन का एक भाव यानी एक अंश है ही। अभेद के कारण हम कहेंगे ना वो सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, परंतु उसी को भेद करके तो थोड़ा सूक्ष्म को ये अंश वहां पर है उसका। यदि ऐसा न माना जाए तो इसके जात्यंतरत्व के मानने में विरोध आता है, यानी दो मिलकर अन्य ही कोई जाति का परिणाम हुई ना, हम भले उसको बिगड़ा हुआ कहेंगे अन्य कुछ कहेंगे, और ऐसा मानने पर सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघातीपना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है। आप कहेंगे उसका उदय है और वो सर्वघाती है, तो सर्वघाती है तो आप उसको उदय क्यों नहीं कहते हैं, उसको क्षवश्रमिक क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न है ना वो सर्वघाती, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व को भिन्न जातीयता प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन के एक देश का अभाव है, इसलिए उसके सर्वघातीपना मानने में कोई विरोध नहीं है। एक देश का अभाव है, एक देश का एक देश प्रकट है, कुछ अंश प्रकट है कुछ अंश का घात हुआ है, वो अंश का घात करने की अपेक्षा सर्वघाती लिया और अन्य का घात नहीं हो रहा इसलिए वो क्षोक्षम लिया। कितने ही आचार्य, ये पहली चर्चा पूरी चल रही है दोबारा, मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, तथा सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम अथवा अनुदय रूप उपशम से, और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिए उसके क्षावक्षमिकता कहते हैं, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उक्त लक्षण सव्यभिचार है ने सदोष है, सव्यभिचार यानी सदोष है। ये क्या दोष है ने व्यभिचार क्या है, वो पहले प्ररूपण किया जा चुका है, 199 पृष्ठ पर इसकी बहुत चर्चा अपनी हुई थी वहां पर, यानी उन्होंने क्षोभक्षम सम्यक्त्व में भी अकेले सम्यक प्रकृति पर यह घटित किया था, सम्यक मिथ्यात्व में भी अकेले एक प्रकृतियों में उन्होंने वो क्षोभक्षम घटित किया था, अभी इसलिए यहां नहीं कहते, फिर भी बहुत सारा कह दिया उन्होंने। अब चौथे की बात पूछेंगे, असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो उवसमीयो वा खयो वा कहो व समयो वा भावो, नारके असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है, नारकों में कौन कौन से सम्यक तो हो सकते हैं, प्रथम उपशम तो होता है, वेदक तो होता ही है, क्षायिक वाले भी पहले नरक में पाए जाएंगे, तो इसलिए हम नारकी की सामान्य से बात करें, पहले दूसरे तीसरे की बात करेंगे तो बात वो अलग होगी। तो कहते औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षायोपशमिक भाव भी है। जैसे अधकरण आदि तीनों ही करणों को करके सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के औपशमिक भाव होता है, यानी मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त हुए तीन करण करके, क्योंकि वहां पर दर्शन मोहनी कर्म के उदय का अभाव है। दर्शन मोहनी कर्म के क्षपण करने वाले समय दृष्टि जीवों के क्षायिक भाव होता है, क्योंकि वह अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। अन्य समय दृष्टि जीवों के क्षौषमिक भाव होता है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म के उदय के साथ उसके आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से तथा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए उसके भी क्षयोपशमिकता कितने आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होती है, क्योंकि वैसा मानने पर व्यभिचार देखा जाता है अथवा अति प्रसंग दोष आता है। वहां पर भी उन्होंने बताया था, अभी जो सम्यक प्रकृति जो है ये निकालो, हमने उसकी चर्चा की थी ना, वहां उपशम का अर्थ प्रसन्नता लिया था, यानी उसका उदय, जो उदय रूप जो है। अभी 199 की बात की थी ना वहां पर, असंयत समय दृष्टि 200 नंबर के पृष्ठ पर। चौथी लाइन से ये वो कैसे घटित होता है वो नीचे दिया है, और बीच वाला जो समाधान है ना, क्षौषमी भाव कैसे घटित होता है वो बताया वहां पर। ये अन्य प्रकृतियां उदय रूप नहीं, वो वहां कारण नहीं बताया है। सम्यक प्रकृति अकेले में ही उन्होंने क्षौषमी भाव घटित किया। देखो, यथास्थित अर्थ के श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति, यथास्थित अर्थ है जैसे प्रयोजनभूत सात तत्व है, जैसे है वैसे ज्यों का त्यों श्रद्धान, यानी तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान और उसको घात करने वाली शक्ति, यानी वो मिथ्यात्व रूप शक्ति, यानी जो कौन सी शक्ति, वो जिसके कारण वो कर्म का नाम है मिथ्यात्व कर्म, और उसकी शक्ति कौन सी है, ये श्रद्धान को घात करने वाली, जब सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है, यानी वो पूरा घात करने की जो शक्ति थी, वो अनुभाग था, वो अनंत गुणाहीन होकर, यानी अनंत वे भाग रहकर सम्यक प्रकृति रूप हो जाते, उसके स्पर्धक बनते हैं, तब उनकी क्षय संज्ञा है, उसी को क्षय कहा। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षोपशम कहते हैं, यानी वो क्षय को प्राप्त है, वो सर्वघाती पने को, वो नष्ट हो गया उनका, और वो देशघाती रूप से है, अब उसका उदय है, उसको उन्होंने उपशम या प्रसन्नता कहा। यानी क्षय और उपशम ऐसे वहां एक ही बार उन्होंने दोनों घटित किए थे। उससे उत्पन्न होने से वेदक सम्यक्त्व क्षयोपशमिक है, यह कथन घटित हो जाता है, ये बात उन्होंने घटित की। उपशम के, हाँ, उस उपशम को ही प्रसन्नता कहा यहाँ पर, उसका उदय है ना, और सम्यक तो बना रहा है, इसलिए उसका नाम उन्होंने प्रसन्नता रूप रख दिया, उसका भी उदय है ना, प्रसन्नता नहीं, बस उसमें तो शक्ति नहीं है, बस वो प्रस्फुटित है, सम्यक तो प्रकट है, इतना उसका अर्थ लेना। संयमा संयम पर भी एक घाती प्रत्याख्यान पर ही उन्होंने घटित किया था, प्रत्याख्यान वर्ण पर, अभी उसकी चर्चा नहीं आएगी, जब मनुष्यों में तिरंचों में आएगी तब करेंगे फिर दोबारा। अब अपने पेज पर आना, पेज नंबर 209, ये पैराग्राफ हो गया अपना, 209 पर चल रहा था ना। सार्वश्रमिक भाव होता है क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म के उदय के साथ आत्मसुर की प्राप्ति होती है, बताए ना। अभी 14 नंबर का पढ़ना है। उदयेण भावेण पुणो असंजदो, जैसे हमने गुणस्थानों में देखा था, असंयत सम्यक दृष्टि नाम है, वहां सम्यक दृष्टि ये जो है उसमें तीन भाव घटित हुए, और असंयतपना जो है उसमें औदयिक भाव है। किंतु नारकी असंयत सम्य दृष्टि का असंयत तत्व औदयिक भाव से है, क्योंकि असंयम भाव संयम को घात करने वाले कर्मों के उदय से होता है। असंयम क्यों है? असंयम का घात करने वाले कर्म वहां उदय रूप है, जिस पहले चारों ही गुणस्थानों में घटित होता है। पहले में तो अनंत आनंदी अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण सारे संजल यानी इसके घात करने वाली है ना। इसलिए असंयत यह औदयिक भाव है। इस अंत दीपक सूत्र से, क्योंकि असंयतपना यहाँ तक है, चौथे तक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे ही है, इसलिए अंत में बताया वो पहले सबको लागू होगा। तो अंत दीपक सूत्र से अतिक्रांत सर्व गुणस्थान, अतिक्रांत गुणस्थान ने अभी चौथे की बात है, तो तीन पहले गुणस्थान अतिक्रांत कर लिए, अतिक्रांत किए ने उसको लांग कर अभी चौथे में आया, तो पहले तीनों में वो लागू होगा। अतिक्रांत सर्व गुणस्थानों में असंयतपना उदयिक है यह सूचित किया गया है, यानी चौथे में तो है ही है, पहले दूसरे और तीसरे में भी असंयतपना है और वह उदय की भाव है। ये तो इन जनरल नारकियों की बात हुई। एवं पढ़माए पुढ़वीये नैरयाए नैरयाणम, इस प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकियों के सर्व गुणस्थानों संबंधी भाव होते, जो सामान्य नारकियों में घटित हुआ वही यहाँ घटित होगा, कि अन्य नरकों में क्या विशेषता होगी क्या नहीं घटित होगा, शायद समय को अन्यत्र नहीं घटित होगा। तो चौथे वाले का जो समय दृष्टि में शायिक भाव बताया था वो दूसरे तीसरे आदि नरकों में नहीं घटित होगा, बाकी तो सब भाव घटित हो गए। तो जैसा सामान्य का है वैसा ही पहले पृथ्वी में भी होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है उदयिक भाव है, सासाधन समय दृष्टि है पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि है क्षयोक्षमिक भाव है, और असंयत समय दृष्टि यह औक्षमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षौक्षमिक भाव भी है, तथा संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत है। इस प्रकार नारक सामान्य की भाव प्ररूपणा से कोई विशेषता नहीं, यानी वो पहले नरक का नारकी और सामान्य से नारकियों का कथन, इसमें कोई विशेषता नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। विधियादि जाव सप्तमीय पुढ़वीय नेरिये सु मिथ्या इट्ठी शासन सम्मा दिट्ठी सम्मा मिथ्या दिट्ठीनम ओघम, द्वितीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकों में मिथ्या दृष्टि शासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों के भाव ओघ के समान है। यहाँ ओघ में पहले तीन गुणस्थान ले लो, या ओघ यानी सामान्य नारकियों में जो बताए वो ले लो, बात एक ही है, क्योंकि उनका भी वैसा ही था। यह सूत्र सुगम है। 17 नंबर, असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो वह समीवो वा खवो समीवो वा भावो, उक्त नारकियों में दूसरे पृथ्वी से लेकर सातवें तक असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है, औक्षमिक भाव भी है और क्षौक्षमिक भाव भी है। है के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए ना, एक ही भाव लिया ना। यानी यहाँ क्षायिक भाव नहीं है असंयत समय दृष्टि, क्योंकि दर्शन मुनि के उदया भाव यानी उदय का अभाव लक्षण वाले उपशम के द्वारा उपशम सम्य दृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वह उपशमिक है, यानी यहाँ प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। शंका, यदि उदयाभाव को भी उपशम कहते हैं, यानी उदय का अभाव है उसी को अगर उपशम कहेंगे तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि वह शेष तीनों गतियों के, अभी यहाँ जो लिखा है ना वो निकाल दिया हमने, यहाँ क्या लिखा है तीनों देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है, वो निकाल देना। वह शेष तीनों, अब यहाँ ऐसा लिखना, गतियों के उदयाभाव से उत्पन्न होता है। फिर से पढ़ती हूँ, शंकाकार कहते हैं तो देवपना जब चल रहा है तो अन्य तीन गतियों के उदयाभाव चल रहा है, उससे वो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए देव पर्याय को औषमिक नहीं कहा जा सकता। अब इसका समाधान पढ़ेंगे आगे के पेज पर। विशेष, अच्छा इसी को विशेषार्थ, उसकी शंका क्या है उसको समझा रहे हैं। विशेषार्थ, गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से, ये गति जाति कौन सी प्रकृतियां हैं, कौन सी मूल प्रकृतियों के भेद है, ये नाम कर्म। तो नाम कर्म के टोटल कितने भेद है मालूम है, 93। तो उसमें से कुछ पिंड रूप है और कुछ सिंगल सिंगल है, एक एक जो। तो पिंड प्रकृतियां नहीं, जो बहुत सारी है जैसे हमने यह विकल्पों में देखा था, तो गति नाम कर्म है, तो उसमें चार गतियों के चार गति नाम कर्म अलग अलग है, उन सबको मिलकर एक गति नाम कर्म कहेंगे तो ये पिंड प्रकृति कहलाती है। ऐसे जाति नाम कर्म में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति सब मिलकर जाति नाम कर्म कहेंगे, उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। ऐसी पिंड प्रकृतियां कितनी है अश्विन भाई, 14 बताएंगे। गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान सहनन हुँ? फिर वो तो बाद में है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी विहाय गति, और कौन सी छोड़ी, गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान सहनन अंगोपांग, अंगोपांग रह गया था, स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी विहाय गति, ये 14 हुए, अंगोपांग रह गया था, यानी एक से अनेक प्रकृतियां हैं उसको पिंड प्रकृतियां कहते हैं। तभी यह क्या कह रहे हैं देखो, गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृति के उदय आने पर, उदय किसी एक का चलेगा, जिस गति में जो एक इंद्रियों को, तो एक इंद्रिय जाति का ही उदय होगा, उनके तिर्यंच गति का ही उदय होगा, अन्य गतियों नाम कर्म जो उसका उदय नहीं होगा उस समय। तो एक प्रकृति के उदय आने पर अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियों का, यानी वहां जो अन्य प्रकृतियां भी पड़ी है, हर अंतर्मुहूर्त कुछ ना कुछ बांध रहा है तो अन्य भी वहां पड़ी है, उनका जो उसी प्रकृति में संक्रमण होकर उदय आता है, और ये सब कभी ना कभी बांधी हुई है तो वो भी उदय के सन्मुख होकर उदय के दूसरे निषेक तक कहाँ पहुंची है। उदय किसका है, जैसे अभी एक इंद्रिय में है तो तिर्यंच गति का उदय है, तो अन्य तीन गतियां क्या है उदय में आते आते, जैसे हमने सर्वघाती का देशघाती होता है देखा था, अन्य तीन गतियों के परमाणु अभी ये तिर्यंच गति रूप से उदय में आए, एक ही समय वाला संक्रमण होकर उदय में आता है, उसे स्तिबुक संक्रमण कहते हैं, ये स्पेशल संक्रमण है, रेगुलर संक्रमणों में इसको नहीं गिनते, इसका नाम है स्तिबुक या थ्यूक का संक्रमण। जैसे उन्होंने एक इंद्रिय का उदाहरण लिया, एक इंद्रिय जीवों के उदय प्राप्त एक इंद्रिय जाति नाम कर्म में, अभी किसका उदय नहीं है, इस इंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का, अनुदय प्राप्त द्विंद्रिय जाति आदि का, यानी द्विंद्रिय जाति तीन इंद्रिय जाति चतुर्द्रिय जाति आदि का संक्रमण होकर उदय में आना, उसको क्या कहेंगे? स्थिभुक संक्रमण। गति नाम कर्म भी पिंड प्रकृति है, उसके चारों भेदों में से किसी एक के उदय होने पर अनुदय प्राप्त शेष तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा संक्रमण होकर विपाक होता है। विपाक होता है ना, उदय आता है, क्योंकि जो उदय के सन्मुख है तो उसको उदय तो आना ही है, अभी उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे हमारे अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो जो पहले हमने मनुष्य तिर्यंच गति बांधी है, नरक गति बांधी है, देव सब पड़ा है सत्ता में, उनका क्या होता है? वर्तमान एक निषेक में वो मनुष्य गति रूप होकर होकर उदय में आ रहे हैं। सजातीय प्रकृति में उसका संक्रमण होता है। प्रकृति में यही बात देव गति को लक्ष्य में रखकर कही गई है कि यहाँ शंकाकार जो पूछ रहा है वह यही कहता है जिसके देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे जीवों के अन्य तीन गतियां उदय रूप नहीं है। नाम कर्म के उदय काल में शेष तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है। प्रश्न क्या था देखो यहाँ उसका, अभी फिर प्रश्न पढ़ो तो ख्याल में आएगा कि 17 सूत्र के नीचे जो बताया था, दर्शन मुनि के उदय अभाव लक्षण वाले उपशम के द्वारा उपशम समदृष्टि उत्पन्न होता है। इसके लिए शंकाकार पूछता है, यदि उदय के अभाव को ही उपशम कहेंगे तो देवगति वाले के अन्य तीन गतियों का उदय अभाव है तो उसको भी औपशमिक कहना पड़ेगा। अन्य तीन गतियों का उपशम हो रहा है गति नाम कर्मों का। यहाँ समाधान है एक्चुअली, अभी जो नया पैराग्राफ है वो समाधान रूप से होना चाहिए, क्योंकि नीचे दूसरी शंका है। यहाँ लिखना समाधान, ये शंकाकार पूछ रहा है कि उसको औपशमिक क्यों नहीं कह रहे हो, उसको तो उदय ही कहेंगे जिसका उदय है, उसका औपशमिक नाम नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट यानी कथन यानी नियम है, ये नियम है, तो ये नियम है तो उसको भी औपशमिक कहो ना, ये कहना शंकाकार का कहना। अभी उसके उत्तर में कहते हैं, दर्शन मोनी कर्म की अवयव स्वरूप, यही है ना उसका नहीं, एक मिनट, ऊपर क्या है जरा पढ़ लेते। यदि उदया भाव भी वो समय उच्चाई तो देवत्तम भी ओवसनियम होज तिन्नम गई न अनुदया भावे न उपज्य मानता दो न तिन्नम गईनम थ्यूक संकमे न उदयस्य उलंभा देवगई नामाय उदयो वलंभा दो। समाधान यहाँ ऐसा है इसका भाषांतर कहाँ लिखा है देखो, ऐसा नहीं है न तिन्नम गईनम थ्यूक संकमेन उदयस्य उलंभा, यानी तीन गतियों के थ्यूक संक्रमण के द्वारा उदय का उदय उपलब्ध हो, उदयस्य उलंभा उदय का यानी उदय पाया जाता है। देवगति नाम कर्म के उदय काल में शेष तीन गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है। देवगई नामाय उदवो व लंभादोवा, और देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। यानी अन्य तीन गतियों का थ्यूक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है और देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ये इसका उन्होंने विशेषात के बाद ये समाधान के दो लाइनें लिखी नहीं है। ये रखकर कही गई है कि ये जो है ना वो समाधान होना चाहिए। पेज नंबर 211 पर विशेषात के जो लास्ट दो लाइन है ना, क्योंकि वो उन्होंने कहीं लिखी नहीं है, समाधान यहाँ लिखना चाहिए था और बाद में विशेषात होना चाहिए था। नहीं, पर वहाँ पर भी इसलिए ऐसा कहा है, पर ऐसा कहा है तो फिर कहाँ कहा है, वो कहना पहले था, यानी वो समाधान इसी पेज नंबर 211 पर लास्ट में रखना चाहिए था। समाधान ऐसा रखना था यहाँ पर, देखो न हमेशा कहते ना, ऐसा नहीं है, जब न कहते हैं नहीं ऐसा लिखते हैं, जैसे देखो 207 पेज को प्राकृत में नीचे से तीसरे न लिखा ना, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि यानी उन्होंने शंकाकार ने क्या पूछा था कि अन्य तीन गति नाम कर्मों का उदयाभाव है इसलिए उसको उपशम कहो, तो कहते उसका उदयाभाव नहीं, किस रूप से उदय है, थ्यूक संक्रमण के द्वारा उनका उदय है। तो इसका अर्थ अभी यहाँ एक वाक्य ऐड करना, शंका के नीचे थोड़ी लाइन है ना, वहां समाधान लिखो, और समाधान लिखो पेज नंबर 210 पर नीचे लिखो, शंका के नीचे जो लाइन थोड़ी स्पेस है ना वहां लिखो समाधान, नहीं लिखना नहीं, क्योंकि तीनों गतियों का थ्यूक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है, द्वारा उदय पाया जाता है और देवगति नामाय उदयो लंबादोवा, देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। उन्होंने देवगति के उदय काल में ऐसा लिखा है और देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। यानी उनका भी उदय है परंतु अन्य इसी रूप होकर उदय में आ रहे हैं, उदय तो हो रहा है उनका। अभी इसका उन्होंने विशेषार्थ आगे के पेज पर बताया, क्योंकि ये जो है ना इसका भाषांतर कहना रह गया है, ऊपर प्राकृत में उसको अंडरलाइन करना, जो हमने किसका लिखा वो ख्याल में आ जाता है। समाधान हमने ऊपर से ले लिया वहां, जो उन्होंने नहीं किया था वहां। हाँ, उसका हमने भाषांतर कर दिया। अभी औषमिक सम्यक्त के बारे में बता दिया, अभी वेदक सम्यक्त की बात अभी आगे के पृष्ठ पर 211 पर वो बता रहे हैं उसका भाषांतर। ये समाधान तो हमने अलग से लिख ही दिया, अभी यहाँ अलग से डालने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पर नहीं डालना कि वो समाधान का उन्होंने पूरा विशेषार्थ यहाँ लिख दिया। हाँ क्योंकि स्त्रीभुग संक्रमण क्या है वो भी समझाना था उनको, उसका उदाहरण भी देना था। अब वेदक सम्यक की बात करेंगे। दर्शन फिर से संक्रमण, केवल संक्रमण होना नहीं, उदय के समय में एक समय के लिए सजातीय में तो संक्रमण होता रहता है सत्ता में, उसको संक्रमण नाम है। संक्रमण में ये एक समय जब उदय में आता है उस एक ही समय में, दूसरे निषेक में अपने रूप से पड़ा है, वर्तमान निषेक में वो अन्य रूप से हो रहा है। एक ही समय का निषेक संक्रमित, इसका नाम है अलग स्त्रीभुग संक्रमण, ऑर्डिनरी संक्रमण में इसको नहीं गिनते। संक्रमण के कितने भेद बताए उसमें, इसको नहीं गिनते। कितने भेद? पांच है। एक सर्व संक्रमण है, स्त्रीभुग को उसमें नहीं लेना, वही तो मैं कह रही हूँ। सर्व संक्रमण, फिर गुण संक्रमण, विद्या संक्रमण और दो बताओ। एक है अध प्रवृत्त संक्रमण और एक है उत्वेलना। सम्य दृष्टि मिथ्या तो में आते ही पहले अंतर्मुख तक अध प्रवृत्त संक्रमण चलता है, बाद में वो उद्वेलना चालू होती है। एक समय वो उसी समय उदय में आते आते संक्रमित होता है। हाँ यानी वर्तमान में जब पहुंच गया बस। इसलिए उसको समय यानी संक्रमण के प्रकारों में उसको नहीं गिनते, इसका अलग से नाम है। अभी यहाँ पढ़ रहे दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 211। दर्शन मोहनीय कर्म की अवयव स्वरूप, यानी दर्शन मोहनी का ही ये उसी से बनी हुई है। दर्शन मोहनी के तीन है ना उसमें से, और देशघाती लक्षण वाली वेदक सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से, उसको वेदक सम्यक्त्व प्रकृति लिखा। सम्यक प्रकृति के उदय से लिखो तो अच्छा है। यहाँ तो वेदक सम्यक्त्व प्रकृति ऐसा लिखा ही नहीं ऊपर। ऊपर अगर पढ़ना है प्राकृत की पहली लाइन देखो, मोहनीय अवयवस्य देशघादी लक्षणस्य उदयादो उपन्न सम्मादिट्ठी भावो खवो समीवो। इसका अर्थ क्या है? दर्शन मोहनी कर्म की अवयव स्वरूप और देश लक्षण, देशघाती लक्षण वाली प्रकृति के उदय से। वेदक समय का नाम उन्होंने नहीं डाला था, देशघाती लक्षण वाली के उदय से इतना ही लिया था उन्होंने। लक्षण वाली का उदय नहीं, लक्षण वाली प्रकृति का उदय। वेदक समय तो प्रकृति ऐसा ऊपर लिखा ही नहीं है। यानी वो वेदक सम्यक तो निकाल दो उसमें, सम्यक प्रकृति लिखो तो भी चल जाएगा, परंतु वहाँ प्रकृति के उदय से। और वो प्रकृति कैसी है? दर्शन मोहनी का अवयव है और देशघाती उसका लक्षण है। हाँ वेदक निकालो, सम्यक प्रकृति चल जाएगा एक तो भी, परंतु ऊपर तो डाला ही नहीं उन्होंने कुछ। हाँ, उत्पन्न होने वाला समय दृष्टि भाव क्षावक्षमी कहलाता है, वो सम्यक प्रकृति उनको उन्होंने आगे उन्होंने लिखा है वेदक सम्मत फद्दयाणम आगे लिखा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी डाली। देखो प्राकृत में सेकंड लाइन में लिया उसको। हाँ वेदक सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है अभी लिखा उन्होंने, पहले उसको नहीं लिया था। क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन के प्रतिबंधन की शक्ति का अभाव है, यह उसके स्पर्धक कैसे हैं तो ऐसे इतने वो माइल्ड हो चुके हैं कि अभी वो समस्या का घात करने के लिए समर्थ नहीं है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियों के उदयाभाव को उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त क्षय और उपशम, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होने से सम्यक दृष्टि भाव सौक्षमिक कहलाता है। अब यहाँ उनको ले लिया इस तरह से, शंका, यह क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता? दूसरे से सातवें नरक की बात चल रही नहीं, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्षायिक समय दृष्टि जीवों की उत्पत्ति का अभाव है। उदयेण भावेण पुनः असंयदो, किंतु उक्त नार के असंयत समय दृष्टियों का असंयतत्व औदयिक भाव से है। द्वितीय आदि पृथ्वियों के सम्यक दृष्टित्व को औपशमिक और क्षयोपशमिक, इन दो संज्ञा वाले भावों को सुनकर वहाँ असंयत भाव के परिज्ञानार्थ यानी उसका ज्ञान कराने के लिए प्रश्न करने वाले शिष्य के संदेह को विनाश करने के लिए यह सूत्र आया है। यानी वहाँ असंयतपना कौन सा भाव है? द्वितीय आदि पृथ्वीगत असंयत समय दृष्टि नारकियों का असंयत भाव संयम घाती चारित्र मुनि कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण औदयिक है, तथा इस सूत्र के द्वारा अतीत गुणस्थानों में यानी पहले दूसरे तीसरे असंयत भाव के अस्तित्व का निरूपण किया गया है। पहले उसको अतिक्रांत गुणस्थान कहा था, यहाँ अतीत गुणस्थान कह दिया। ये नारकियों की बात हो गई, अब तीर्यंचों में घटित करेंगे। पहले सामान्य से तीर्यंचों में बताएंगे, फिर एक एक उसके भेद करके बताएंगे। तिरिक्ख गदीय, तिरिक्ख पंचिंद्रिय, तिरिक्ख पंचिंद्रिय, तिरिक्ख पज्जत, पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोनि निसु, पज्जत पज्जत लिखा, पज्जत चाहिए ना, पंचिंद्रिय पज्जत इति पाठ, डबल तो चाहिए नीचे। उन्होंने पंचिंद्रिय तिरिक का बदले के पंचिंद्रिय पज्जत किया है, तो के लिए नहीं बताया। यहाँ पंचिंद्रिय तिरिक का पज्जत लिखा है, अन्य प्रति में पंचिंद्रिय पज्जत लिखा है, डबल तो बराबर है, करना चाहिए। मिच्छा दिट्ठि पहुड़ी जाव संजदा संजदानम ओघम, तीर्यंच गति में तीर्यंच, पंचेंद्रिय तीर्यंच, पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है। क्या भाव था? पहले में औदयिक, दूसरे में पारिणामिक, तीसरे में क्षयोपशमिक, चौथे में तीनों भाव समय दृष्टि के, और असंयतपना है वो औदयिक, और फिर संयमासंयम सौक्षमिक भाव। ये जैसे गुणस्थानों में बताया वैसा यहाँ पर होगा। पारिणामिक के कहाँ चर्चा हो, तो सब आ गए पारिणामिक उसमें सासाधन वाले की अपेक्षा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है औदयिक भाव, सासाधन समूह दृष्टि है पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि है क्षौपशमिक भाव है, सम्यक दृष्टि है औपशमिक क्षायिक और क्षौपशमिक है। क्षायिक वो होता है ना भोग भूमि का, जिन्होंने मनुष्यों में पहले तीर्यंचावी बांधी थी, बाद में सम्यक तो करके क्षायिक हुआ और भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, वो जीव लेना। तथा औदयिक भाव की अपेक्षा वह असंयत है। संहिता संहित यह सौक्ष्मिक भाव है। इस प्रकार ओघ से चारों प्रकार के तिर्यंचों की भाव प्ररूपणा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुणस्थानों का डिवीजन ही इस भाव के आधार पर होता है, इसलिए वो किसी भी गति का हो उसमें कोई फर्क नहीं है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में भेद प्रतिपादन करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। क्या भेद हो सकता है? उपसायिक वाला नहीं होगा, क्योंकि समयक के साथ कोई तिर्यंच नहीं बनती, त्रिवेद में उत्पन्न नहीं होता। नवरी विशेषो यानी इतना डिफरेंस है। पंचेंद्रिय तिरिक्ख योनिनिषु असंजत संवाद इत्थिति को भावो ओव समयो वा खवो समयो वा भावो। विशेष बात यह है कि पहले सबके साथ उसको बता दिया वैसा ही है कहीं, क्योंकि उसके पहला का दूसरे का तीसरे का पांचवे का भाव सेम है, चौथे में डिफरेंस है। विशेष बात यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है, औपशमिक भाव है और क्षौपशमिक भाव है, यानी क्षायिक भाव नहीं है, क्योंकि 213 पर आते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उपशम समय दृष्टि और क्षौपशम समय दृष्टि जीवों का ही पाया जाना संभव है। शंकाकार पूछते हैं उनमें क्षायिक भाव क्यों नहीं संभव? उसका समाधान, क्योंकि बद्धायुष्क क्षायिक समय दृष्टि जीवों की, यानी जिन्होंने पहले नचिरेंचायु बांध लिए ऐसे अभी जो क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य है, उनकी स्त्री वेदियों में उत्पत्ति नहीं होती, यानी समयत्व के साथ कोई स्त्री में स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त शेष गतियों में दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा का अभाव है, यानी वो तिरियंच में जाने के बाद क्षपणा करे तो कहते अन्य गतियों में होते ही नहीं क्षपणा। इसलिए पंचेंद्रिय तिरियंच योनिनियों में क्षायिक भाव नहीं पाया जाता। ओदयेन भावेन पुनः असंयदो, किंतु तिरियंच असंयत समय दृष्टियों का असंयतत्व औदयिक भाव से है। यह सूत्र सुगम है। तिर्यंच योनिनियों की बात चल रही थी। क्या क्या मुझे आपका प्रश्न ही नहीं समझ में। अब यहाँ असंख्यात लोग की बात नहीं हो रही
है। नहीं,
शायद भाव है, वो अलग भी है और शायद भाव ही अलग बात है ना। शायद नाम क्यों पड़ा? नहीं सर, कर्मों का क्षय पाया जाता है। यहाँ किंतु तिर्यंच असंयत समय दृष्टि लिखा ना, तिर्यंच पहले जो सूत्र में बताया था ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में यानी उसी का सूत्र था, बाकी तो बता चुके थे। यह सूत्र सुगम है। अब मनुष्यों में बताएंगे। औपशमिक क्षयोपशमिक भाव है बताया था, और उसमें असंय तत्व है वो औदयिक भाव है, जैसे अन्य में लिया था वैसे ही वहां पर है। मनुष्य गदीय मनुष्य मनुष्य पज्जत मनुष्यनीसु मिच्छा दिट्ठी पौड़ी जा व अजोगी केवलित्ति ओघम। मनुष्य गति में मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है। मनुष्यनियों के गुणस्थान कितने हैं? एक से चार, एक से चौदह। जब हम श्रीवेदी के पूछे तो कितने बताए थे? एक से नौ। मार्गणा में जो डिफरेंस है वहाँ मनुष्यनी ये मार्गणा क्या है वो उसको बता रही, वो श्रीवेदी वाला पहले था परंतु उसके गुणस्थान चौदह बताएंगे। जब मनुष्य गति में मनुष्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग्य केवली गुणस्थान तक भाव ओग के समान है, क्योंकि तीनों प्रकार के मनुष्यों संबंधी समस्त गुणस्थानों की भाव प्ररूपणा में ओग के सकल गुणस्थानों से कोई भेद नहीं है। समझ में आई ना बात? वो भाव कौन सा होता है? तो पहले चार गुणस्थानों में हम दर्शन मुनि की बात करेंगे, फिर चारित्र मुनि की वगैरह वगैरह। क्योंकि तीनों ये तो हो गया शंका, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य और लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों के भावों का सूत्र में प्ररूपण क्यों नहीं किया गया? समाधान, नहीं, क्योंकि ओग संबंधी भाव प्ररूपणा से ही उनके भावों का परिज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके भावों का सूत्र में पृथक निरूपण नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि एकमात्र मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही होता है और वो तो है ही अवदैव। वही तो, उसका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक मिथ्या तो ही गुणस्थान है, जहाँ एक से अधिक गुणस्थान है, जहाँ पांच गुणस्थान है उसका अलग अलग से वर्णन करेंगे, जहाँ एक ही गुणस्थान है वो मिथ्या दृष्टिपना उदयिक भाव है, वो कह देंगे उसको। 214 देवगदीय देवेशु मिथ्यादिट्ठि पहुड़ी जाव असंजत सम्मादिट्ठित्ति ओगम। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक भाव ओग के समान है, जिसे नारकियों में हमने देखे थे वैसे देवों में, देव इन जनरल बात यहाँ देख रहे हैं। जब उसके भेद करेंगे भवनवासी वगैरह तो भवनवासियों में उपसायिक भाव नहीं होगा, अभी तो देव इन जनरल बात कर रहे हैं। क्योंकि देव मिथ्या दृष्टियों की औदयिक भाव से, देव सासाधन सम्य दृष्टियों की पारिणामिक भाव से, देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों की औषमिक भाव से और देव असंयत सम्य दृष्टियों की औषमिक शायिक तथा शौषमिक भावों की अपेक्षा ओग मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीवों के भावों के साथ समानता पाई जाती है। वो सब लागू होगा, वो असंयमपना भी औदयिक है, वो भी लागू होगा वहां पर। अब उसके भेद करेंगे। भवनवासी वाणवेंतर ज्योतिषीय देवा देवियो सोधम निशान कप्पवासी देवियो च मिच्छादिट्ठि शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छादिट्ठि ओगम। भवनवासी वाणवेंतर और ज्योतिष देव एवं देविया, वहां तो सब सभी ले लिया, और सौधर्म ईशान कल्पवासी की देविया, केवल देवियों के लिया, क्योंकि देवियों में वो समय दृष्टि नहीं उत्पन्न होते हैं ना, तो क्षायिक वाले नहीं होंगे, इसलिए उनकी बात अलग बताएं। तो इनके मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि एक शब्द डालो वहां पर, ऊपर जो हमने अभी पढ़ा था, सासाधन समय दृष्टि के बाद नीचे सूत्र में इनके मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये भाव ओघ के समान है, क्योंकि तीन गुणस्थान तो कोई डिफरेंस नहीं है, आगे उनके क्षायिक नहीं होता ये बताना है, क्योंकि इन सूत्रोक्त गुणस्थानों का सर्व प्रकार ओघ से कोई भेद नहीं है। असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो वह समयो वा खयो समयो वा भावो, असंयत समय दृष्टि उक्त देव और देवियों के कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है और क्षौपशमिक भाव भी है। मनीषा बिन आपके लिए प्रश्न है, यह सौधर्म और ईशान की देवियां ली, ऊपर की देवियां क्यों नहीं ली? आपको मालूम है देवियां तो 16वें स्वर्ग तक पाई जाती है ना, तो ऊपर की देवियों का नाम नहीं लिया, सौधर्म ईशान वाली देवियों का ही नाम लिया। वो सारी देवियां वही उत्पन्न होती है, आपको पता था क्या है? नहीं। और वो ऊपर के जो देवियां होती है ना, वहां के देव आके यहाँ से ले जाते हैं। मनुष्य में नहीं, पहले दूसरे स्वर्ग में से मनुष्य में तो वो अमेरिका वाले आते हैं यहाँ इंडिया में लेने के लिए। इसलिए यहाँ केवल सौधर्म ईशान कल्पवासी देवियाँ लिखा। ये हमें ऐसा चौंकना है, ऐसा उनको ही क्यों लिया, ये प्रश्न मन में आना चाहिए। ये ऊपर देवियाँ होती उत्पन्न ही नहीं होती, हाँ ऊपर की जो नियोगिनी देवी उनकी वो अवधि ज्ञान से तो जानते हैं और अपनी अपनी ले चलते हैं। क्या 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 भवन वासियों की अपनी अपनी देवियां हैं। नहीं नहीं, उनकी देवियां जो वो अलग, उनका ग्रुप ही अलग है। ये सारे कल्पवासी देवियां हैं, यानी वैमानिक जिसको कहेंगे। ये भवनत्री का अलग और ये वैमानिक अलग। वैमानिकों की वो देवियां सारी वहां उत्पन्न होगी। कितना है पहले दो स्वर्गों में मैक्सिमम संख्या है ना सबकी, देव की भी और देवियों की उनसे ज्यादा है। उनकी संख्या आती है, पहले पढ़ी थी हमने, ज्यादा ही होती है ना, होती ही ज्यादा है, होगी ना। अश्विन भाई जैसे इतनी होगी, जितने विमान ऐसे वहाँ मात्र देवियाँ ही उत्पन्न होती है उपपादों में, इतने विमानों में मात्र 7 लाख वगैरह कहती है ऐसा उसमें आते हैं, 32 लाख में से कुछ विमानों में तो मात्र देवी देवियाँ और कुछ में तो देव और देवियाँ वो उपपाद में वो दोनों ही उत्पन्न होते हैं। त्रिलोक में आया था ना, हाँ ऊपर के उनकी आयु अलग अलग टाइप के, ऊपर जो जाने वाली देवी बड़ी आयु वाली होंगी, 55 पल्ले वाली। तो कहते उनका कौन सा भाव है ऐसा, ये समय दृष्टि तो औपशमिक भाव भी है और क्षौपशमिक भाव भी है, क्योंकि उनमें उपशम सम्यक्त्व और क्षौपशमिक सम्यक्त्व इन दोनों का ही पाया जाना संभव है। यानी वहां भी प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यानी ये समझ में है, कोई भी देवी हो दो भी हो, जन्म से समय दृष्टि नहीं होती, बाद में समय तो प्राप्त करेगी तो भी चौथा गुणस्थान, और चौथे गुणस्थान वाले की पूजा नहीं होती। ये चरणानुयोग का नियम है, पूजन हम करते हैं देव का करते हैं या मुनियों का करते हैं, उनका गुणस्थान छठा सातवां या शास्त्र का कर सकते हैं। नीचे के गुणस्थान वालों को पूजन नहीं होती, मन क्या करे, समाज में अन्य लोगों की देवियां तो हमारी भी देवियां हैं, हमने खड़ी कर दिए फिर उसको, हाँ वो हमारे जैसे वो भक्त है, होती है ना, क्योंकि वो उनके भक्त है ना, तो भक्त है तो जरूर उनको भी बहुमान आता है, वो भी उनके समोचन में चले जाएंगे, वहां पे उनके भी जो विशिष्ट जो जैसे हमारे कोई प्रेसिडेंट आते हैं तो उनके साथ उनके सारे सब सब पूरा लवाजा मारता है, उसके कमांडोज भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। वैसे इनमें भी ये सारे वो उनका वैभव है ना, वो तो सहज रूप से स्वयं उनके पीछे चलते हैं, वो उनका उनका उसमें कुछ नहीं है, भगवान का उसमें कुछ नहीं है और उनके साथ है कुष्मांडी, हाँ है 24 है कुछ फेमस है उसमें से, पद्मावती फेमस है, कुष्मांडिनी एक है, ज्वालामालिनी है, चक्रेश्वरी है, हर एक तीर्थंकर की अलग अलग यक्षिणी हो, तो क्योंकि वो शासन देवता ही कहते हैं ना उसको, देव देवियां सब। अरे वो कैसे कहेंगे, वो तो चौथे गुणस्थान वाली, वो स्वयं भक्त है, भगवान की भक्त है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप सभी साधर्मियों को बुलाते हैं, ब्रह्मा बेन आप आओ, लक्ष्मी बेन आप आओ, तो भगवान की पूजा करने के लिए बुलाते हैं, इनकी पूजा नहीं करते आप, समझ में आई ना। वैसे उनको जो जब विधानों में उनको आओ यहाँ तिष्ठो करके उनको भी वहाँ स्थापित करते, पर उनकी पूजा नहीं करना, उनको अर्घ्य नहीं देना है, उनको बुलाया हमने, ये हम विधान कर रहे हैं आप भी यहाँ शामिल हो जाओ, तो इंद्रों को बुलाने की पद्धति है। परंतु उनको बुलाकर पूजा हम देव की करनी चाहिए। अब यहाँ क्या कि तो आने वाले देवों को भी अर्घ्य चढ़ाए दिए जाते हैं, ये चलता है सब जगह। आपको क्या मालूम आपने कहाँ विधान देखे डिटेल में? नहीं, और फिर उसमें अब कहते नहीं नहीं हम आठ का अर्घ नहीं देते, हम पांच का ही देते हैं, तो उसमें भी कुछ रास्ता बताते हैं कि हम अर्घ ही नहीं, वो हम पांच द्रव्य का ही अर्घ देते हैं, आठ का नहीं देते, ऐसा उसमें फिर कुछ ये हमने सब सुना है, ये 20 पंक्तियों में सब चलता है। आपने क्या देखा है, किस में देखा? ये होता है, कोई कहते हम खाली आरती करते हैं, हम बाकी कुछ नहीं करते, पद्मावती का खाली कुंकू लगाते हैं, हम कहाँ उनको अष्टद्रव्य से करते हैं, उनकी ओटी भरते हैं, यानी किसी न किसी रूप में उनके उनको सम्मान करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके घर में आए आपने किसी को साड़ी पहना दी, पर वो भगवान बनाकर उसको कर रहे हैं आप, ये मान्यता है निकाल। और क्यों करते हैं? वो हमारा भला करेंगे, हमारा संकट दूर करेंगे, हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर कोई संकट आएगा। जैसे अन्यमती उनकी भी गौरी है, भवानी माता है, संतोषी माता है, हमारी भी माता है, इसलिए उसके पीछे लगते हैं। आप जाओ सावत में, वो हुमच में इतनी बड़ी तो वो पद्मावती है यहाँ, और उसके ऊपर इतना सा पार्श्वनाथ है। क्या कुछ भी चलता है, धर्म के नाम पर कुछ बात चल रही है। यहाँ ये प्रश्न पूछ रहे शंकाकार, पेज नंबर 215 पर 215। उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियों में सभी देवी अली शायिक भाव क्यों नहीं बतलाया? समाधान, नहीं, क्योंकि भवनवासी वान्यंतर ज्योतिष्क देव द्वितीय आदि छह पृथ्वियों के नारकी सर्व विकलेन्द्रिय सर्वलब्धि पर्याप्त और स्त्री वेदियों में समय दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। यानी सम्यक को लेकर इन पर्याय में नहीं उत्पन्न होता, स्त्रियों के सम्यक तो नहीं होता ऐसा नहीं कहा है, पहले बहुत से सम्यक को लेकर स्त्री पर्याय में नहीं उत्पन्न होता ये कहा रहा है। वो देवियां वहां जाने के बाद सम्यक को उत्पन्न करती है, जो शची इंद्राणी नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाने वाली है नियम से, तो वहां तो उसने जाने के बाद ही तो सम्यक को प्राप्त किया, और एक ही भाव में आके मोक्ष जाने वाली है, पुरुष होकर मोक्ष जाएगी वो। कुछ भी हो सकता है ना, पर सादी मिथ्या दृष्टि हो तो वेदिक समय दृष्टि हो, शायद तो यहाँ आने के बाद शायद करना है, क्योंकि वहाँ उसमें होता ही नहीं ना, वहाँ कोई नए से उत्पन्न करता नहीं है, और यहाँ से समय को लेकर उसमें उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, दोनों है। तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य गतियों में दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा का अभाव है, इसलिए उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियों में क्षायिक भाव नहीं बतलाया गया। उदयेन भावेन पुनो असंयदो, किंतु उक्त असंयत समय दृष्टि देव और देवियों का असंयत तत्व औदयिक भाव से ही है, यह तो सर्वत्र देखा हमने, यह सूत्र सुगम है। सौधम मीसाण पौड़ी जाव नवगेवज्ज विमान वासीय देवेशु मिच्छा दिठ्ठी पौड़ी जाव असंजद सम्मा दिठ्ठी ओघम। सौधर्म ईशान कल्प से लेकर नव ग्रहवेग पर्यंत विमानवासी देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है, क्योंकि सौधर्मादि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवों के ओग संबंधी चारों गुणस्थानों की अपेक्षा विवक्षित भावों के साथ कोई भेद नहीं, सभी गुणस्थानों में सभी जो ओग में देखा था वैसा ही घटित होता है। अब कहते अनुदिशादि जाव सवठ सिद्धि विमान वास्य देवेशु असंयत सम्मादिठिति को भावो, वहाँ सारे चौथे गुण स्थान वाले होते हैं, तो उसमें कौन से भाव होते हैं? ओव समयो वा खयो वा खो समयो वा भावो। अनुदिश आदि से लेकर सर्वार सिद्धि तक विमान वासी देवों में असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भी है, क्षायिक भी है और क्षौपशमिक भी है। क्या औपशमिक कैसे होगा ब्रह्मा? आपको पूछा नहीं, जिसको पूछा है वो बताएंगे। प्रथम ऑप्शन होगा क्या वहां पर? प्रथम ऑप्शन कब होता है? मिथ्यात्व में से जब प्राप्त करेगा तब प्रथम, वहां मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है। बोलो द्वितीय ऑप्शन, यहाँ जो द्वितीय ऑप्शन यानी श्रेणी करके जो मरा है और वहां वो द्वितीय ऑप्शन के साथ उत्पन्न हुआ तभी उसके औपशमिक होगा, फिर भी है इसलिए उसको स्वीकार किया, क्योंकि प्रथम ऑप्शन करने के लिए उसको मिथ्या दृष्टि के साथ वहां जाना पड़ेगा, मिथ्या दृष्टित्व के मिथ्यात्व के साथ। जैसे वेदक समय दृष्टि देवों के औपशमिक भाव, क्षायिक समय दृष्टि देवों के क्षायिक भाव और उपशम समय दृष्टि देवों के औपशमिक भाव होता है। इस पर शंकाकार पूछ रहा है, अनुदिश आदि विमानों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव होते हुए उपशम सम्यक दृष्टियों का होना कैसे संभव है? यानी वो प्रथम उपशम कैसे हो सकता है? इसलिए उसने पूछा, क्योंकि कारण के अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति का विरोध है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के साथ, ये कौन सा उपशम सम्यक्त्व है? द्वितीय उपशम। तो उपशम सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी पर चढ़ते और उतरते हुए मरण कर देवों में उत्पन्न होने वाले संयतों के उपशम सम्यक्त्व पाया जाता है। ये संयत को ही लिया, क्योंकि अनुदिश और अनुत्तरों में संयत ही उत्पन्न होंगे, चौथे पांचवे वाले वहां नहीं जाएंगे। द्वितीय उपशम वाला भले चौथे पांचवे तक नीचे उतर कर आ सकता है और नीचे के देवों में जा सकता है, अनुदिश और अनुत्तरों में तो संयत ही उत्पन्न होते, इसलिए संयतों में लिखा। मुनि ही जाएंगे ना ऊपर, सहनन का तो नियम है ही है। हाँ, अंतर्मुख यानी शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वेदक हो जाते नियम से। शंका, सूत्र में तीन स्थानों पर शुक्ल लेशा में अगर मरते हैं तो नीचे में नहीं जाएंगे, आनंद प्राण से लेकर जाएंगे कहीं पर जहाँ की आयु बंधी है और जहाँ जैसा सहनन है। ग्रेवेक में भी जा सकते हैं। देखो, सूत्र में तीन स्थानों पर प्रयुक्त हुआ वा शब्द अनर्थक है। लिखा ना वो समय वा खयो वा खो समय वा, क्योंकि एक ही वा शब्द से इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। समाधान, नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि जीवों के अनुग्रहार्थ सूत्र में तीन स्थानों पर वा शब्द का प्रयोग किया है, यानी ये होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा। ओदयेन भावेन पुनो असंयदो, किंतु उक्त असंयत समय दृष्टि देवों का असंयतत्व औदयिक भाव से है, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त हुई। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।